आई गौर प्रेमानंदे श्री राधा वृंदावन बिहारी जी की, श्रील प्रभुपाद जी की, श्री गौरांग महाप्रभु की, राधा मदन मोहन जी की, श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हमने श्री कृष्ण जन्म का पार्ट वन बताया, तो जो कल नहीं थे उनके लिए थोड़ा सा बता दें रिकैप कि श्री कृष्ण का जन्म दो जगह पर हुआ है, एक मथुरा के कंस के कारागृह में और एक गोकुल में नंद बाबा के घर। तो देवकी वसुदेव के गर्भ में, देवकी के गर्भ में जो जन्म हुआ उसका वर्णन कल वर्णन किया। आज हम नंद बाबा यशोदा के पास क्या हुआ उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो द्रोण और धरा नाम के बहुत ही श्रेष्ठ भक्त थे भगवान के, धरा नाम की देवी और द्रोण नाम के प्रभु। उन्होंने भी 12,000 वर्ष दैवी वर्ष तपस्या की थी, पेड़ से पड़ने वाले सूखे पत्ते खाकर उन्होंने तपस्या की थी और फिर भगवान ने उनको दर्शन दिया था। तो देवकी वसुदेव ने रुष्णी और सुतपा के रूप में जो वरदान मांगा था, और वसुदेव नंद और यशोदा माई इन्होंने द्रोणधरा के रूप में जो वरदान मांगा था, थोड़ा सा इसमें अंतर है। वसुदेव देवकी ने भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त करने की इच्छा थी और द्रोणधरा ने भगवान की सेवा करने की, पुत्र के रूप में सेवा करने की मांग की थी। इसलिए देवकी को पुत्र के रूप में प्राप्त हुए और तत्क्षण चले गए। नंद बाबा को यशोदा को प्राप्त हुए और उनके पास में उन्होंने बहुत सुंदर बहुत समय तक उनको बाल लीला का आनंद दिया। इसलिए हमें सदैव जब भगवान से हम कुछ मांगते हैं तो वैसे तो मांगना नहीं चाहिए भगवान से। आपकी क्या राय है, भगवान से मांगना चाहिए कुछ नहीं मांगना चाहिए? कितने लोगों को लगता है भगवान से मांगना चाहिए कुछ? हरी बोल। और कितने लोगों को लगता है कि कुछ भी नहीं मांगना चाहिए? हरे कृष्ण। लेकिन हम हाथ किसके लिए भी ऊपर करें लेकिन हम मांगते तो रहते ही है। ये हमारा स्वभाव है। लेकिन जब मांगते हैं तो एक तो कोई भौतिक वस्तु नहीं मांगनी चाहिए जो नश्वर है, जो काल के प्रभाव से नष्ट होने वाली है, इसका एक्सपायरी डेट है, ऐसा कोई वस्तु मांगनी नहीं चाहिए। और अगर मांगनी है तो भगवान के संबंधित वस्तु मांगनी चाहिए और उसमें भी बड़े सोच विचार से मांगना चाहिए, क्योंकि भगवान हमारी इच्छाओं को बड़े ध्यान से सुनते हैं और उसको पूर्ण भी करते हैं। हो सकता है इस जन्म में नहीं अगले जन्म में पूर्ण करेंगे, लेकिन पूर्ण ज़रूर करेंगे। इसलिए बड़े सोच विचार से मांगना चाहिए और बेस्ट यह है कि भगवान के सामने केवल सेवा ही मांगे। किम करा हा, व्हाट शुड आई डू, इतना ही मांगे। क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि भगवान सर्वज्ञ हैं, भगवान सब कुछ जानते हैं। अरे संत भी ऐसे होते हैं त्रिकालज्ञ और सब कुछ जानते हैं, तो भगवान तो उनके स्रोत हैं, भगवान सब कुछ जानते हैं। और हमारे लिए अभी क्या ज़रूरत है, क्या चाहिए, क्या हमारी अवस्था है, क्या हमारी कर्मों की स्थिति है, सब कुछ जानते हैं भगवान। और ब्रज में एक प्रथा है, कुछ कुछ मंदिर में आज भी वो उसके पुजारी लोग बाहर बैठते हैं गेट पर, जब हम लोग जाते हैं अंदर तो कहते हैं देखो लाला से कुछ मांगना नहीं, अब अगर मांगना है तो जाना ही नहीं अंदर, हमारे लाला छोटे से हैं, वो उनको आशीर्वाद देना बस। आप बढ़िया भाव है बहुत। इसमें एक गर्भित भाव ये भी है कि भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, श्रद्धा निष्ठा रखनी चाहिए कि वो सब कुछ जानते हैं, वो हम पर प्रेम करते हैं, हमारे लिए जो आवश्यक है वो करेंगे, शायद मैं जो मांग रहा हूँ मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, वो जानते हैं मेरे लिए क्या आवश्यकता है और क्या देना है। जैसे पिता को पता होता है ना कि बालक के लिए क्या अच्छा होता है, कुछ भी मांगे तो पिता देते नहीं है उसको। तो इस प्रकार से द्रोण धरा ने तपस्या की और भगवान को प्रसन्न किया और फिर वो नंद बाबा और यशोदा बने। और नंद बाबा यशोदा परजन्य महाराज के पुत्र हैं। नंद बाबा परजन्य महाराज देवमीड के वैश्य पत्नी के पुत्र हैं। पांच भाइयों में से मझले भैया हैं और पहले परजन्य महाराज नंदगांव रहते थे, पावन सरोवर के पास उनका तपस्या का स्थली थी, उसका नाम था प्रेम तड़ाग तीर्थ, आज भी और एक नाम है उसका क्षुण्णहार तीर्थ। बहुत सुंदर स्थान है, बहुत अभी कोई जाते नहीं वहाँ पर, लेकिन है वहाँ पर। लेकिन वहाँ पर केशी राक्षस का आतंक हुआ, इसलिए वो परेशान होकर फिर गोकुल चले गए और वहाँ पर अपना राज्य बसाया। और वहाँ पर यथावकाश जब उनके पुत्र सब बड़े हुए, पांच पुत्र, सब लोग उनका नाम लेंगे तो आप महाराज शुद्धि होगी। प्रथम पुत्र का नाम उपनंद, दूसरे पुत्र का नाम अभिनंद, तीसरे पुत्र का नाम नंद महाराज, चौथे पुत्र का नाम सन्नंद या सुनंद, और पांचवें भाई का नाम नंदन, जिसको नंदन चाचा कहते हैं। तो ये सब बड़े हुए तो उन्होंने तुरंत वानप्रस्थ या क्या कहते हैं विरक्ति लेने का सोचा और उपनंद महाराज का राज्याभिषेक किया। और राज्याभिषेक किया, वो तो हमारा संस्कृति है जो ज्येष्ठ पुत्र को सब कारोबार संभालते हैं, तो ज्येष्ठ पुत्र उपनंद राजा बने, मुकुट पहनाया गया, राज्याभिषेक हुआ। और राज्याभिषेक होने के उपरांत मुकुट पहन के वो उन्होंने इसी पूरी सभा को बड़े प्रेम से देखा, क्योंकि पुराने राजा पिता की तरह होते थे, सब प्रजा पर पुत्र की तरह, पुत्रियों की तरह, संतान की तरह प्रेम करते थे। सबको देखने के बाद में उन्होंने नंद महाराज को देखा और उनके ऊपर उनकी दृष्टि जो है वो स्थिर हो गई, बिल्कुल इतनी स्थिर हो गई, इतनी गहरी हो गई, इतनी प्रेम से भरी हो गई कि नंद महाराज को भी संकोच होने लगा कि मुझे ही क्यों देख रहे हैं। फिर वो अपने राज सिंहासन से उतरे, राज सिंहासन तो ऊंचे होते हैं ना, तो स्टेप से उतरना पड़ता है, तो उतरे और जहाँ पर नंद बाबा बैठे हैं वहाँ पर पहुँचे और भौरी बहुत प्रेम से उनको देखा और अपना मुकुट उतार के उनको पहना दिया। तो सबको आश्चर्य हुआ, नंद बाबा को बड़ा संकोच हुआ। तो उपनंद महाराज ने कहा कि हम ज्येष्ठ तो हैं निश्चित ही, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन राजा बनने के लिए जो गुण आवश्यक है उन गुणों में मेरा जो ये अनुज भ्राता है वो श्रेष्ठ है, इसलिए मैं आज नंद बाबा को, नंद मेरे छोटे भाई नंद को ये घोषित करता हूँ कि ये ब्रजमंडल के राजा होंगे। तो नंद बाबा भी बड़े संकुचित हुए, लेकिन बड़े भैया की आज्ञा भी पालन करना है, तो उन्होंने कहा कि मैं एक ही शर्त पर ये मुकुट स्वीकार करूँगा कि आपके आज्ञा के बिना, आपके सहमति के बिना मैं कोई कार्य नहीं करूँगा, हर वस्तु हर कार्य मैं आपको पूछ के करूँगा और आपका यह उत्तरदायित्व रहेगा कि आप मुझे सलाह देंगे। और उपनंद बाबा ने कहा ये ठीक है मैं करूँगा, और नंद बाबा का फिर इस तरह सब लोग जयघोष हुआ ब्रज के राजा के रूप में। कितनी सुंदर बात है ये, आज के काल में क्या होता है, जो मेरा हक नहीं है वो भी दूसरे से छीन के हम लेते हैं, इसके लिए मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ। और ये हमारे लिए कथा जो है वो अभी इस वक्त इस समय बार बार सुनने लायक कथा है, क्योंकि जब बार बार हमारे परिवार में, हमारे इतिहास में, हमारे राज्य के, देश के इतिहास में यही देखते हैं ना हम लोग। कंस ने भी वही किया था, अपने पिताजी को पकड़ के जेल में डाल दिया और जबरदस्ती राजा बन गया। और कितने राजाओं का ऐसा ही इतिहास है, मुगलों का तो यही इतिहास है, हर एक पुत्र अपने पिता की हत्या या पिता को कैद करके ही राजा बना है, तो राज्याभिषेक प्रेम से कुछ अभिषेक वगैरह नहीं हुआ है। उस समय इस स्थिति में ये कथा जो भाईचारे के लिए बहुत आवश्यक है, ये बार बार सुननी चाहिए। अपना अधिकार ये समझते हुए दूसरों को देना कि वो हमारे से अधिक योग्य है, हमारा विचार है कि हम सबसे योग्य हैं, सब अधिकार, सब धन संपत्ति, मान सम्मान मुझे ही मिलना चाहिए, उस स्थिति में ये अधिकार प्राप्त हुआ है एकदम धर्म के अनुसार, उन्होंने नंद बाबा को दिया। और नंद बाबा भी ऐसे ड्रामेबाजी नहीं कर रहे हैं, अरे नहीं 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 भाई साहब, आप तो राजा हैं और हम तो केवल आपके ही आज्ञा से करेंगे। बाद में भी जितने भी प्रसंग आए हैं उसमें उपनंद महाराज के सलाह से ही उन्होंने कार्य किया है। फॉर एग्जाम्पल, जब गोकुल छोड़कर ब्रज में वृंदावन में जाने की बात हुई तो सबसे पहले प्रपोजल उपनंद महाराज ने दिया था। 84 खंबा के जो सभा होती थी रोज शाम को, उसमें उपनंद महाराज ने प्रस्ताव रखा था कि अभी एक साल में यहाँ पर बहुत सारे राक्षसों ने आतंक किया, हर रोज आकर राक्षस हमें त्रासित कर रहे हैं। तो नंद बाबा ने उनके आज्ञा स्वीकार करके तुरंत वृंदावन जाने का उद्योग किया। तो इसके पश्चात नंद बाबा का यशोदा से विवाह हुआ। यशोदा मेहरानो गांव से है। कौन से गांव से है याद रहना चाहिए आपको, नंदगांव से। आज भी वो 8 किलोमीटर दूर है, उत्तर दिशा में काम्यवन की ओर है, 3 किलोमीटर काम्यवन की ओर, फिर राइट टर्न लेंगे तो 5 किलोमीटर मेहरानो गांव है। वहाँ पर उनके पिताजी सुमुख गोप और उनकी माताजी पटुला देवी रहती हैं। उनके 2 भाई हैं, यशधर और यशवंत, और वो बहनें हैं। नाम यशोदा क्यों रखा? क्योंकि जहाँ जहाँ यशोदा गई वहाँ सबको यश प्राप्त हुआ, इसलिए उनका नाम रखा यशोदा। यथावकाश उनका विवाह हुआ और बड़े धूमधाम से विवाह हुआ। नंदगांव में गोकुल में आके बसे और एक ही समस्या थी, बहुत साल बीत गए लेकिन संतान प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आई फिर भी संतान प्राप्त नहीं हुई, तो दुखी थे बेचारे बहुत, क्योंकि राजा के लिए संतान बहुत ज़रूरी है। वैसे सामान्य व्यक्ति के लिए भी संतान होना आवश्यक है। गृहस्थ आश्रम में संतान के बिना वो एक बड़ा तालाब पानी के बिना, ऐसे माना जाता है। एनीवेज, तो नंद बाबा संतों के बड़े भक्त थे। गोकुल में रेसिडेंशियल साधु थे, जिनका नाम क्या है बताइए, किसी को बताए? शांडिल्य मुनि, ये नंद बाबा के लोकल पुरोहित थे, कुल गुरु। तो वो सब, वो भी वहाँ रहते थे, बहुत सारे साधु भी रहते थे। नंद बाबा बड़े साधु सेवा करते थे, सब साधुओं का उन पर आशीर्वाद था, कृपा थी। और हर रोज नंद बाबा यमुना में स्नान किया करते थे। जब गोकुल में थे तो यमुना जी तो बहुत पासी थी, गोकुल यमुना किनारे हैं, और सब साधु भी नदी में स्नान करने के लिए, प्रभाती करने के लिए जाते थे। और रोज उनकी भेंट होती थी, रोज उनका प्रेम में आदान प्रदान होता था। एक दिन नंद बाबा थोड़े से लेट हो गए, अभी बहुत उम्र हो चुकी उनकी, संतान प्राप्ति की अवस्था नहीं है, हो गई है संतान प्राप्ति की उम्र जो है वो आयु निकल चुकी है, लेकिन नियम नहीं छोड़ रहे, रोज जा रहे हैं यमुना जी में। तो उस समय वो टाइमिंग थोड़ा सा मिसमैच होने की वजह से नंद बाबा का, सभी साधु लोग है वो अपने घर की कुटी के बाहर प्रभाती कर रहे हैं। प्रभाती एक सुंदर शब्द है, इसको हम लोग कुल्ला करना कहते हैं ना, मुख मार्जन, उसको ब्रज भाषा में प्रभाती कहते हैं। जो प्रभात में उठकर जो भी करते हैं उसको प्रभाती कहते हैं, स्नान भी हो सकता है, बहुत सारी चीज क्रियाएं हैं, प्रातर विधि। तो वो अपने घर के सामने बैठकर प्रातर विधि कर रहे हैं और नंद बाबा जल्दी जल्दी में यमुना जी जा रहे हैं, तो सारे साधु अपने अपने कुटी के बाहर बैठे, कोई ऐसा पास में नहीं बात करने लगा, क्योंकि बात करके कुछ ट्राई करके बोल रहे हैं, दूर दूर बैठ के हैं लेकिन पास पास पे भी है। एक साथ सब लोग मिलकर नंद बाबा को आशीर्वाद देते हैं, पुत्रवान भव। सब लोगों को पता है शरीर की स्थिति क्या है, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या लगा उनको, उनके हृदय से उत्स्फूर्त आशीर्वाद आया और उन्होंने आशीर्वाद दिया। और आशीर्वाद देने के बाद उनको आश्चर्य हुआ कि हमने ऐसे कैसे बोल दिया, और नंद बाबा हंस पड़े। नंद बाबा ने सोचा अभी ये भी आशीर्वाद अभी इस समय मिलना था, इसका क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, चले गया स्नान करने के लिए। लेकिन जैसे ही उनको साधुओं को थोड़ा सा भान आया कि हम क्या बोले, तो सारे साधु इकट्ठा हुए, बोले अरे हमने क्या बोला, अभी अगर इनको बालक नहीं हुआ तो साधुओं के ब्राह्मणों के वचनों पर लोगों की श्रद्धा उड़ जाएगी। तो ऐसे जब समस्या होती तो साधुगण क्या करते हैं, अपने गुरु के पास जाते हैं। तो गुरु के पास गए, शांडिल्य मुनि के पास, उनको अपनी समस्या बताई, आज क्या हुआ, उत्स्फूर्त तरीके से क्या हुआ आज। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि शांडिल्य मुनि तो त्रिकालदर्शी हैं, उनको सब पता है, भगवान की सारी लीलाओं का पता है, क्या होने वाला है पता है, क्या हुआ है, क्या हो रहा है, सब पता है उनको। इसका भी अर्थ पता है कि इन्होंने ऐसे क्यों बोला, ब्राह्मणों के मुख से भगवान ने ऐसे क्यों बुलवाया, तो पता है उनको। तो उन्होंने उनको बताया कि आप सब लोग मिलकर 18 कोटि आहुति वाला गोपाल मंत्र वाला यज्ञ करो, गोपाल यज्ञ, जिसमें 18 करोड़ गोपाल मंत्र उच्चारण किए जाएंगे और हर एक गोपाल मंत्र के बाद स्वाहा करके आहुति अर्पण की जाएगी। तो उन्होंने वो अपने चिंता के कारण, क्योंकि उनको वो अपने शब्द के प्रति आसक्ति नहीं थी कि मेरा शब्द झूठा हुआ तो मेरी ख्याति, ऐसे नहीं। लेकिन ब्राह्मण वृंद जनरल जो पूरी तरह से अनंत काल तक समाज को मार्गदर्शन करने वाला है, उनके ऊपर भी अगर श्रद्धा एक वर्ग के प्रति उठ जाएगी तो आगे सारी उनकी पीढ़ियां भी उनका सम्मान नहीं होगा। जैसे अभी आजकल कुछ लोग डॉक्टरों को चोर समझते हैं, क्योंकि किसी समय किसी ने कुछ चोरी की होगी, लेकिन उस समय जो गलतफहमी हो गई, श्रद्धा टूट गई और एक प्रकार का विचार बन गया, तो आजकल सब लोगों को सोचते हैं कि डॉक्टर तो पैसे बनाने के लिए डॉक्टर बने हुए हैं। तो एक व्यक्ति जब कुछ गलत कार्य करता है तो वो सोचता नहीं कि आगे इसका कितना दुष्परिणाम होगा। डॉक्टर अच्छे होने पर भी सोचते हैं कि सब लोग चोर हैं, इसी प्रकार से साधुओं के बारे में सोचते हैं कि साधु तो ऐसे ही ढोंगी पेट भरने के लिए घेवा वस्त्र पहनकर बने हुए हैं। कुछ लोग बने ऐसे, लेकिन जो जेन्युइन साधु हैं, जो वास्तविक हृदय से साधु हैं, वैरागी हैं, उन पर भी यही लांछन आता है कि ये भी वैसा ही होगा। तो आजकल वो सम्मान नहीं है जो सम्मान होना चाहिए था, होना चाहिए, वो आज उपलब्ध नहीं है साधुओं को। सब सोचते हैं कि तो पैरासाइट्स हैं, समझ पर समाज पर फेंके हुए टुकड़ों पर जीते हैं, जहाँ पर उनको वंदनीय भाव होना चाहिए उनके प्रति, जिन्होंने इच्छा से वैराग्य स्वीकार किया, भगवान की सेवा के लिए समर्पित हैं, तो कितना गृहस्थों को आदर होना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है कि वो स्वार्थ के लिए भागे नहीं थे शांडिल्य मुनि के पास, समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए वो भागे थे। अगर समाज में ब्राह्मणों के प्रति अगर दुर्विश्वास हो जाएगा तो फिर सब समाज टूटने में कोई टाइम लगता नहीं है, क्योंकि समाज का ब्राह्मण जो है वो सिर है, शीश है। तो उसके पश्चात फिर वो गोपाल यज्ञ जो है आरंभ हुआ। ब्रज के इतिहास में बहुत ही प्रसन्न घटना, बहुत ही उत्साहवर्धक, बहुत ही आनंददायक घटना, 18 करोड़ गोपाल मंत्र की आहुति अर्पण करके गोपाल यज्ञ संपन्न हुआ। ब्रज में बड़ा आनंद का अनुभव हो रहा था, और ब्रज नंद बाबा भी थे उसमें, वो तो यजमान थे, क्योंकि आप यज्ञ का संकल्प करेंगे, यज्ञ करवाएंगे कौन, नंद बाबा ही करवाएंगे। क्योंकि उनको पता था कि मुझे तो संतान तो प्राप्त होने वाले नहीं है, लेकिन यज्ञ करना अच्छा है विष्णु की संतुष्टि के लिए, तो वह संतान प्राप्त ना हो लेकिन यज्ञ करना बहुत अच्छा है। तो उन्होंने यज्ञ बहुत धूमधाम से करवाया, और जब 18वीं करोड़वीं आहुति जब अर्पण हुई तो एक बहुत सुंदर चमत्कार हुआ। तो क्या चमत्कार हुआ, एक नील तेज उस यज्ञ अग्नि से उत्पन्न हुआ, सबके दृश्य में, सबके नजर में, ऐसे नहीं कि वो किसी कुछ लोगों को दिखाई पड़ा, पुरोहित को दिखाई पड़ा, शांडिल्य मुनि को दिखाई पड़ा, ऐसे नहीं, सारे जनता को जो सभा में यज्ञशाला में उपस्थित थे, क्योंकि कुछ लोग यज्ञ करते हैं और कुछ बहुत सारे लोग देखते हैं, तो बहुत सारे लोगों के सामने ये घटना हुई कि नील तेज दृश्य रूप में प्रकट हुआ, आकाश में गया, वो भी सब लोगों ने देखा, आकाश में जाके उस नील तेज ने एक सुंदर बालक का स्वरूप धारण किया और फिर वापस नीचे आया वो, और वो तेज नंद बाबा के हृदय में प्रवेश किया। नंद बाबा भी बहुत आश्चर्यचकित हो गए, वो भी देख रहे हैं और अचानक देख रहे हैं कहाँ जाएगा, उनके हृदय में आके बस गया। जैसे ही वो नील तेज बालक उनके हृदय में आके बसा, नंद बाबा बड़े तेजस्वी हो गए, बड़े सुंदर हो गए, वैसे ही सुंदर थे, और उनका दिव्य तेज बढ़ा, बड़ा दिव्य आनंद का अनुभव किया उन्होंने इस सुंदर घटना के कारण। और फिर वो दिव्य तेज उन्होंने भी देखा, बाकी सबने भी देखा, उनके हृदय से वो यशोदा के हृदय में प्रस्थापित हो गया। यशोदा जी बड़ी प्रफुल्लित हो गई, आनंदित हो गई, तेजस्वी हो गई, बड़ा दिव्य आनंद का अनुभव सबको हुआ, उनको तो हुआ ही हुआ। फिर उसके बाद वो तेज जो है यशोदा के गर्भ में स्थित हो गया और यशोदा गर्भवती हो गई। बोलो यशोदा माई की। वो कौन सा दिन था, वो कार्तिक पूर्णिमा का दिन था। कालगणना दो प्रकार की होती है, अमावास्यांत और पूर्णमास्यांत। तो अमावास्यांत यानी प्रतिपदा से अमावस्या तक महीना गिनते हैं, जैसे महाराष्ट्र में गिनते हैं, उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत में पूर्णमास्यांत महीना का कालांतर कालगणना गिनते हैं, इसमें पूर्णिमा से पूर्णिमा महीना मानते हैं, और अगला महीना पूर्णिमा के अगले प्रतिपदा से शुरू होते हैं, जो हम लोग कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा कहते हैं, दूसरा महीने का नाम शुरू होता है। तो उत्तर प्रदेश के कालगणना के अनुसार भाद्रपद शुक्ला ने भाद्रपद कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, इज दैट राइट, भाद्रपद प्रतिपदा और हमारी अमावस्यांत कालगणना से कार्तिक पूर्णिमा के दिन, दिन तो एक ही है, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट है। जैसे कि आज का दिन जो है वो हमारे हिसाब से क्या है, श्रावण वद्य अष्टमी, ब्रज के हिसाब से क्या है, भाद्रपद शुक्ला अष्टमी, यही अंतर है थोड़ा सा, यानी वे टेक्निकल डिफरेंस है। तो कार्तिक पूर्णिमा को यशोदा गर्भवती हुई, उनके गर्भ में कौन आए, उनके घर में माधुर्य कृष्ण आए। देवकी के गर्भ में कौन आए, देवकी नंदन कृष्ण जो है वो ऐश्वर्य कृष्ण है, जो सारे ऐश्वर्य के स्रोत हैं। देवकी के गर्भ में सातवें गर्भ में कौन आए, अनंत शेष, जो बलराम जी का ऐश्वर्य हिस्सा है। और पूर्णिमा के पूर्णिमा रोहिणी के गर्भ में कौन थे, ओरिजिनल बलराम जी, जो लीला अवतार है, माधुर्य लीला अवतार भगवान कृष्ण के। और वो जाकर फिर रोहिणी के गर्भ में जो ओरिजिनल बलराम जी थे उस पर विलीन हो गए, एक रूप हो गए। उसी तरह से जो वसुदेव को प्राप्त हुए, देवकी के गर्भ में से जन्म हुआ, उनको उन्होंने आदेश दिया मुझे ले चलो, तो वो ले गए और फिर वसुदेव के द्वारा वहाँ पर रखे गए। मैं थोड़ा फिर पीछे जाता हूँ वापस एक बार। ये जो गर्भावस्था प्राप्त हुई उसके अंदर भी एक रहस्य है, वो ये है कि जब कृष्ण भगवान ने ये सब कुछ आदेश दे दिए, जब गाय माता रोते रोते आई थी, पृथ्वी माता गाय बनकर, तो सारे लोगों को आदेश दिया, आपको कौन क्या क्या बनना है, क्या क्या करना है, सबको रोल दे दिया अपने, जाओ सब लोग जन्म ले लो, कुरुक्षेत्र, द्वारका, मथुरा, वृंदावन, सारे वंशों में जन्म ले लो। उस समय कहा कि सातवें बालक के रूप में मेरे अंश अवतार अनंत शेष आएंगे, तो योग माया को आदेश दिया कि आप उन्हें प्रस्थापित करोगे देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में। इस क्रिया को करने के पश्चात आप मेरी बहन बनोगी, मैं आपको पारितोषिक दूंगा, आप मेरी बहन बनोगी, मेरे साथ सहोदरा बनोगी, एक ही उदर में आप रहोगी, एक गर्भ में रहोगी। तो इसलिए जब यशोदा गर्भवती हुई तो बालक और बालिका दोनों एक साथ गर्भ में स्थापन हुए, वो तो ट्विन प्रेगनेंसी थी, जुड़वा। और 9 महीने माया योग माया और माधुर्य कृष्ण एक गर्भाशय में रहे, यशोदा के गर्भाशय में, इसे उनको सहोदरा कहा गया है। उन्होंने वरदान भी दिया था कि इस कार्य के लिए आप पृथ्वी में आप जब प्रकट हो जाओगी तो आपको शारदा, चंडी, काली, अनंत नामों से पूजन किया जाएगा, आप आशीर्वाद देने में समर्थ होगी, आपकी जो पूजन करेंगे आप उनको आशीर्वाद दोगी वो सत्य होगा, आप इच्छाओं की पूर्ति करने में समर्थ रहेंगी, ऐसे सुंदर आशीर्वाद दिया, लेकिन मेरी बहन बनोगी ये सबसे बड़ा आशीर्वाद दिया उनको। तो यशोदा को जब जन्म हुआ, यशोदा का जब बालकों का जन्म हुआ, तो उसमें थोड़ा सा अंतर कैसा है, रोहिणी नक्षत्र के द्वितीय चरण में देवकी कृष्ण का जन्म हुआ, देवकी नंदन कृष्ण का जन्म हुआ। हर एक चरण में, हर एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। दूसरे रोहिणी नक्षत्र के दूसरे चरण में श्री कृष्ण मथुरा में प्रकट हुए और रोहिणी नक्षत्र के तीसरे चरण में कृष्ण और योग माया प्रकट हुई गोकुल में। ये थोड़ा सा अंतर है उसके अंदर। तो जब वसुदेव वहाँ पहुँचे हैं तो बीच रात में जब यशोदा ने जन्म दिया बालकों को, तो योग माया की ऐसी सेवा है, बहुत सारी सेवा है योग माया की। एक तो वहाँ पर सारे पैरोदारों को सुला दिया और सब लोग सो गए कंप्लीटली, केवल वसुदेव देव की जग रहे हैं, बाकी सब सो रहे हैं। उनका संवाद हुआ, बाहर निकले, दूसरी सेवा क्या किया, सारे दरवाजे खोल दे, सारी चेन श्रृंखलाएँ सब गिरा दी। यमुना किनारे आए तो रास्ता मिला, जमुना जी ने रास्ता दिया। और यहाँ पर जब जन्म हुआ कृष्ण का यशोदा के गर्भ से, तो वहाँ पर भी सभी लोगों को सुला दिया। यहाँ इतना सुला दिया कि यशोदा ने जन्म दिया लेकिन उसको पता नहीं था, उतनी जल्दी वो निद्रिस्त हो गई कि उसको पता नहीं कि एक को जन्म दिया, दो को जन्म दिया, लड़का को दिया कि लड़के को दिया, कि एक लड़का एक लड़की, कुछ भी उसको पता नहीं। जन्म दिया और ग्लानि से वो सो गई। और जो रोहिणी है, जो भी अभी भी उनको बलराम जी की प्राप्ति हुई है, जो कभी वो भी नन्हे बालक की माँ है, और बहुत सारी उपनंद की पत्नी, अभिनंद की पत्नी, सभी लोग वहाँ सूचिका गृह में बैठी हुई है। अभी जैसे डिलीवरी का समय आता है तो बड़ी बड़ी बुजुर्ग औरतें सब आ जाती हैं हेल्प करने के लिए। तो ये तो नंद रानी है, यशोदा माई है, सभी लोग इकट्ठा है वहाँ पर। लेकिन जितनी स्त्रियाँ, अनुभवी स्त्रियाँ आई हुई है यशोदा रोहिणी के साथ, सब लोग निद्रस्त हो गई। नंद बाबा निद्रस्त हो गए, सब लोग सो गए, पूरे ब्रज जो है वो पूरा गोकुल सो गया। अकेले यहाँ पर अभी वसुदेव अकेले जग रहे हैं, और अकेले जग रहे हैं और प्रवेश करते हैं, सब लोग सोचेंगे कि वो सुतिका गृह में प्रवेश क्यों कर रहे हैं। कोई भी पुरुष जो है सभ्य गृहस्थ जो है धर्म का पालन करने वाला कभी भी स्त्री के निजी कक्ष में प्रवेश नहीं करता है। तो ये प्रवेश क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको कृष्ण का आदेश था। जब आदेश होता है भगवान का या गुरु का तो कुछ कुछ सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन भी करना पड़ता है। जैसे गोविंद ने तो चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने के लिए उनको लांग के चले गए, उनकी सेवा करने के लिए, लेकिन खुद की सेवा जब भोजन करने का समय आया तो उन्होंने नहीं लांगा उनको, वैसे ही भूखे रहे वो। तो महाप्रभु जी ने उनको प्रश्न किया है तो उन्होंने उत्तर दिया है कि आपकी सेवा में मैंने आपको लांगा, धर्म का उल्लंघन किया, लेकिन मेरी सेवा में मैं धर्म का उल्लंघन नहीं कर सकता। तो धर्म के पालन के लिए उन्होंने सुचिका गृह में प्रवेश किया, केवल बालक को रखने के लिए और कुछ देखने के लिए नहीं। और देखा कि उनके गोद में एक नन्ना सा बालक और एक कन्या सो रही है, तो उनको भी आश्चर्य हुआ, क्योंकि उनको बताया गया था कि आपको कन्या को लेके आना है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन नहीं था कि बालक पुत्र भी वहाँ पर होगा, एक आपको रखना है और ले आना, इतना ही बताया था। तो उन्होंने अपने पुत्र को वहाँ पर रखा, वो पुत्र तुरंत ही एक एक क्षण में दूसरे बालक में विलीन हो गया। नंद वसुदेव को बड़ा आश्चर्य हुआ। अभी कितने बचे? दो बचे, एक पुत्र और एक पुत्री। तो पुत्री को उठाया, वो भी नहीं रोई, ना कृष्ण रोए, ना देवकी कृष्ण आते समय रोए, ना देवकी कृष्ण अपने कारागृह में जन्म लिया वहाँ रोए, ना रस्ते में रोए, ना एक्सचेंज में रोए, ना कन्या रोई। तो कन्या को उठाकर वो चले गए, कन्या भी नहीं रोई, सीधे जाके रोई कभी। जब वो कारागृह के अंतर कक्ष में पहुंचे, सब श्रृंखलाएं दरवाजे बंद हो गए, श्रृंखलाएं लग गई, तो उन्होंने रुदन किया। अभी थोड़ा सा वर्णन करना जरूरी है क्योंकि वो आज के दिन का वर्णन है। अमावस्यांत कालगणना के अनुसार श्रावण मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र हर्षण योग वृष लग्न अर्धरात्रि का समय चंद्रोदय का काल, इस समय भगवान का जन्म हुआ। और प्रकृति में क्या क्या अंतर हुए, ये भी एक प्रकार से योग माया का ही प्रभाव है। अर्धरात्रि में चंद्रोदय के काल में अष्टमी के दिन आधे चंद्रमा थे तो वो पूर्ण चंद्रमा हो गए, क्योंकि चंद्रवंश में भगवान जन्म ले रहे हैं, इसलिए चंद्रमा ने एक ही बार पूरे सृजन के निर्माण के समय से आज तक एक ही बार आदि चंद्रमा पूर्ण चंद्रमा बन गए। उनको देखकर, जो सूर्य को देखकर कमल खिलते हैं वो खिल गए सूरज समझकर, तो सहस्त्र दल शतदल ऐसे रात्रि में कमल खिले। तो चंद्र को देखकर खिलते हैं वाटर लिली, इसको कुमुद कहते हैं, वो भी खिल गए। और भ्रमर जो दिन में गूंजते हैं वो रात में गूंजने लगे। एक साथ एक ही ऋतु आता है, दो महीने रहता है, तो छह ऋतु सब एक साथ में आए, अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट परफॉर्मेंस उन्होंने दिया। क्या क्या दिया? पक्षी जो दिन में किलरव करते हैं वो रात में मधुर ध्वनियों में किलरव करने लगे। वृक्ष फूलों से लद गए, प्रफुल्लित हो गए जो दिन में खुलते हैं। आकाश में स्वच्छता आई और तारे भर गए, सब बादल छा गए, गर्जना करते हुए पहले धीरे धीरे बाद में जोर जोर से वर्षा करने लगे। दश दिशाओं में निर्मलता छा गई, भूमंडल में प्रसन्नता छा गई, क्योंकि पहले कंस के भय से भूमंडल में भय था, खास करके मथुरा में। दश दिशाएं निर्मल हो गई, नदी समुद्र कुंडों के जल स्वच्छ हो गए, मंद शीतल सुगंधित वायु फूलों के पुकसर लेकर सब जगह बहने लगे। दुखी भयभीत साधु जिन्होंने मंत्र बोलना और आहुति अर्पण करना बंद किया था, बीच रात्रि में कोई यज्ञ नहीं करता है, बीच रात्रि में मंत्राग्नि कर उच्चारण करके मंत्राग्नि प्रकट किया और आहुति अर्पण करना आरंभ किया निर्भयता से, स्वाहा स्वाहा का उच्चारण से वातावरण गूंज गया। आनंद से रात को यज्ञ करने लगे, पर्वत वृक्ष गाय ब्राह्मण देवता सभी संपत्ति से समृद्ध हो गए। देवताओं के वाद्य दुदुम्बिया बजने लगी, सब जगह जय जयकार की ध्वनि होने लगी। और जो वनमाला में पांच फूल लगते हैं, पारिजात मंदार अमालती आदि, उन फूलों की वर्षा देवताओं के द्वारा आकाश से होने लगी। मध्य रात्रि में वेदों की ऋचाओं का गान शुरू हुआ, विद्याधर चारण गंधर्व सिद्ध किन्नर सब गीत गाने लगे, नृत्य करने लगे, वाद्य बजाने लगे। इस प्रकार से आकाश में इतना बड़ा उत्सव देवता मनाने लगे। जब वसुदेव निकले, आप बता दिया मैंने आपको ये बात, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये सब एक्सचेंज हुआ, वसुदेव चले गए, वहाँ पर देवी ने अपना रूप दिखा दिया, कंस को धमका दिया, कंस वहां पर पश्चाताप करने लगे, वो सब कल हमने बताया। यहां पर जब भोर का समय हुआ तब योग माया के प्रभाव से नंदिनी जो नंद बाबा की बहन है उसको स्वप्न आया कि मेरी भाभी को पुत्र प्राप्ति हुई है, तो वो झट से उठी क्योंकि पुत्र प्राप्ति या जो भी संतान प्राप्ति की सबको उम्मीद थी कि अभी होगा अभी होगा अभी एनी टाइम हो सकता है, तो उसको स्वप्न आया कि पुत्र प्राप्ति हुई है, तो वो झट से उठी जंप करके और सीधे सूति का गृह में गई और वहाँ देखा कि वह हकीकत में मेरा स्वप्न जो है वो सत्य है और मेरी भाभी को पुत्र प्राप्ति हुई है, तो वो भाग के नंद बाबा के घर गई और नंद बाबा के महल में खटखटाया, भैया उठो आप पुत्रवान हो गए हैं, आप पुत्र के पिता हो गए हैं। उतने में रोहिणी और जो बड़ी माताएं थी वहाँ पर उन्होंने एक सेविका को भेजा नंद बाबा को खबर देने के लिए, ये खुशखबर ये शुभ खबर देने के लिए शुभ वार्ता। तो वो जैसे आई है और उन्होंने नंद बाबा का वो वार्ता दी है तो उस समय कहते हैं कई लाखों गाय भोर के समय पर उनका दुग्ध दोहन हो रहा था, यानी मिल्किंग हो रहा था गौशाला में। तो नंद बाबा इस वार्ता को सुनकर इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा इस समय जितनी गायों का दुग्ध दोहन हो रहा है सभी गायें इस माता को दान दी जाएं। तुरंत ही गेव डोनेशन। तो सदगृहस्थ का क्या लक्षण है, वो कोई भी खुशखबर सुनता है ना तो तुरंत दान देता है। इमीडिएट चैरिटी इज अ साइन ऑफ अ इवॉल्व्ड डेवलप्ड पर्सनैलिटी, आर्य गृहस्थ का ये लक्षण है। उसके बाद वो त्वरित प्रातर्विधि करके तैयार होते हैं और सूतिका गृह की ओर जाते हैं। कहते हैं सूतिका गृह जो था वो बहुत ही पास में था, बहुत ही पास में था, जैसे यहाँ से श्रीनाथ जी रेस्टोरेंट बहुत पास में है, दो मिनट में बात करते करते पहुँच जाते। लेकिन उस समय नंद बाबा के हृदय में इतनी उत्सुकता थी कि उनको लगा कि मीलो दूर है यशोदा का सूतिका गृह, वो एक प्रकार से सोच रहे कि भाग रहा हूँ और वो पता नहीं भाग रहे हैं कि चल रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है, वो तो हवा में ही चल रहे हैं आनंद में। लेकिन बहुत देर के बाद उनको लगा कि युगायितम नेमे शरणम और वहाँ पहुँचे। तो जैसे ही वो आए तो सारी स्त्रियों ने पर्दा बंद कर दिया। क्यों पर्दा बंद कर दिया, सबने बोला आपको क्या देंगे पहले बताओ फिर हम दर्शन देंगे लाला का आपको, यशोदा तो अंदर बैठी है बालक को लेकर। तो नंद बाबा ने सबको प्रॉमिस किया मैं आपको ये दूंगा, मैं आपको गला हार दूंगा कंठ हार दूंगा वैजयंती सब जो कुछ है सब कुछ बड़ा बड़ा प्रॉमिस कर दिया क्योंकि बालक को देखने के लिए बहुत उत्सुक थे। इसके पहले जब यशोदा जगी, जब नंदिनी आई सबको जगाया, यशोदा ने सबसे पहली बार बालक का दर्शन किया और जीव गोस्वामी इतना सुंदर वर्णन करते हैं कि उनको देखकर यशोदा जी स्तब्ध हो गई, आंखें पलक झपकना बंद हो गया, एक टक निहारती रही, सारी क्रियाएं बंद हो गई, मानो श्वास भी बंद हो गया। ये अष्टविकार में एक लक्षण है, जब अति आनंद होता है तो हम स्तब्ध हो जाते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टंड, वी बिकम स्टंड कंप्लीटली स्टंड। बहुत देर के बाद यशोदा देवी अपने आप को संभल पाई, फिर वो उनको बालक को उठाने का बहुत बहुत इच्छा हो रही थी गोद में, लेकिन वो स्तब्ध होने की वजह से उठा नहीं पा रही थी, तो लोगों ने उनके गोद में बालक को रखा, रोहिणी देवी ने और प्रभावती ने और अन्य माताओं ने, और उन्होंने पहली बार अपने बालक को स्तनपान कराया। जब वो स्तनपान किया तो यशोदा के शरीर पर रोमांच हो रहे थे, कंठ गदगद हो रहा था, आंखों में आंसू बह रहे थे, अनेक प्रकार के अष्टविकारों का अनुभव हो रहा था, ऐसा दिव्य अनुभव कि वो मानो शरीर में ही नहीं थी, सारा आनंद दिव्य आनंद आत्मा के सर पर हुआ था। फिर नंद बाबा आए, फिर पर्दा बंद हुआ, फिर प्रॉमिस किया गया, फिर पर्दा खोला गया। नंद बाबा ने जब बालक को पहली बार देखा कि पूरा नंद गांव सूति का गृह नहीं, केवल नंद भवन का आंगन नहीं, पूरा ब्रज जो है वो नील प्रकाश से प्रभावित हो गया था, सब जगह इस नील बालक का तेज जो है वो फैल रहा था, उसकी सुंदर कमल नयन आंखें, हाँ सुंदर घुंघराले केश, बहुत सुंदर स्वरूप, उनका कोमल मक्खन जैसा शरीर। सबसे पहले जब कृष्ण को जन्म होने के बाद उठाने का समय आया तो सबको एक ही समस्या थी कैसे उठाएं, क्योंकि उनका शरीर जो था वो मक्खन की तरह मुलायम था, जैसे ऐसे हम लोग बालक ऐसे उठाते ना, ऐसे उठाएंगे तो ऐसा उंगलियां मिल जाएंगी आपकी, जैसे मक्खन को अगर डालेंगे उंगली तो कैसे मिल जाती है ना, कितना मुलायम मक्खन होता है, वैसे उनका शरीर था। तो उनको उठाने में लग रहा था कि मेरी उंगलियां इतनी सख्त हैं कि हमारी उंगलियों से उठाएंगे तो मक्खन जैसे शरीर वाले कृष्ण को कितनी पीड़ा होगी। ये सोच सोच के उठा रहे हैं। यशोदा देवी भी ऐसे ही संकोच में हैं कि कैसे उठाएं, इतना मुलायम शरीर, इतना सुंदर शरीर, इतना आनंदमय शरीर। तो नंद महाराज भी देख के बहुत स्तब्ध हो गए। बहुत देर के बाद वो अपनी भाव समाधि से बाहर आए और बालक को गोद में लिया, बालक को चूमा और सब लोगों को उपहार दिए, सब लोगों को दान धर्म करना शुरू कर दिया। और तब तक सारे ब्रज में जैसे ही नंदिनी को स्वप्न आया, वो उठी और बाकी लोग उठे, यशोदा उठी, नंद बाबा उठे, सब ब्रज में हवा की तरह खबर फैल गई। और सारे ब्रज के पुरुष स्त्रियां जो हैं वो सब सज धज कर फूलों का हार पहनकर, फूलों को श्रृंगार करते हुए, रत्नों का हार पहने हुए और बहुत पवित्र वस्तुएं अपने सुपड़े में लेते हुए, आंचल में छुपाते हुए भाग भाग के निकली हैं सब लोग नंद भवन की ओर। इतना सुंदर दृश्य था वो कि सब स्त्रियाएं सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर अपने हाथों में भेंट वस्तुएं लेकर भाग रही हैं, सब पुरुष पेटा पहनकर और मक्खन के गोले, दही, दूध लेकर भाग रहे हैं, और स्त्रियों के शरीर में जितने फूल सुगंधित लगे हुए हैं वो सब गिर रहे हैं। तो नंद भवन की ओर जाने वाले सारे जो मार्ग थे वो फूलों से भर गए। उसके ऊपर से देवता नंदगांव में वर्षाव कर, सॉरी गोकुल में वर्षाव कर रहे हैं। तो मथुरा के अंदर भी वर्षा हो रहा है, कंस की नगरी में जमुना जी पर भी वर्षा हो रहा है, और जमुना जी के किनारे में गोकुल उस तरफ है, उधर भी वर्षा हो रहा है, फूलों का वर्षाव ही वर्षा हो रहा है, सब जगह फूल ही फूल दिख रहे हैं। और सारे जो नंद बाबा ने सब वंडी मागद सूत, वंडी मागद वृषावली वृदावली, ऐसे गाने वालों के अलग प्रकार होते हैं। एक जो है भविष्य में जो होने वाला है उसका गौरव करते हैं, एक वर्तमान में जो हो रहा है उसका गौरव करते हैं, एक भूतकाल में जो हुआ है उसका गौरव करते हैं, ऐसे अलग अलग प्रकार का गौरव करने वाले विशिष्ट लोग होते हैं गाने वाले। उन सब लोगों को बुलाया, नृत्य करने वालों को बुलाया, वाद्य बजाने वालों को बुलाया, पूरा नंदगांव, पूरा गोकुल जो है वो पताकाओं से, फूलों से, फूल मालाओं से, तंबुओं से, सब जगह से जो शुभ वस्तुएं हैं उनसे सुसज्जित और सुशोभित हो गया। और जब वो सारी स्त्रियाएं, पहला अधिकार किसका है अंदर जाने का, सूर्य का ग्रह में स्त्रियों का है, तो स्त्रियों को सब जब से पहले आए तो सबको खबर मिली, अरे झुंड में स्त्रियां गोपियां आ रही है। तो यशोदा को लगा, रोहिणी को लगा, अरे लाला को नजर लग जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, लाला जो गोद में थे उसको पूरा आंचल से ढक दिया, सब पास में ले लिया, शीश उठका अपने वक्षस्थल के पास लिया और ऐसे कवर कर लिया और ऐसे रख रहा। सब गोपियां भाग भाग के आई, अरे यशोदा दीदी हमको दर्शन कराओ लाला के। बोले नहीं कराऊंगी। लेकिन कृष्ण जो है वो अपने ब्रजवासी भक्तों को देखने के लिए बड़े आतुर थे। तो जैसे नाना हाना हाना हो रही है, उतने में कृष्ण ने अपने पांव बाहर निकाले और सारी गोपियों ने उनके चरणों के दर्शन किए। बोले नहीं नहीं, आपकी नजर लगेगी मेरे लाला को, मैं नहीं दिखाऊंगी। उतने में कृष्ण ने अपना शीश बाहर निकाला और उसका भी दर्शन हुआ। फिर सब स्त्रियां कहती है, देखो यशोदा हमारे सुपड़े में क्या है, देखो हम नजर लगाने के लिए नहीं आए, नजर उतारने का सामान लेकर आए। उसमें क्या है, रोली है, नोन यानी नमक है, कुमकुम है, राई है, और सब कुछ सारा सामान है, हल्दी है, घी है, और बहुत सारे ग्रेन्स है, भात के ग्रेन्स है, बहुत सारी शुभ वस्तुएं होती हैं, वो सब वस्तुओं को लेकर आए थे। उन्होंने सबके सब लोगों ने मिलकर लाला की नजर उतारी है। ओके, जुग जुग जियो और गोकुल चंद्र बनो, गोकुल के कल्याण का कारण बनो, गोकुल के सब लोगों की सुरक्षा के लिए आप व्यवस्था करो, इस तरह से उन्होंने भर भर के उनको आशीर्वाद दिए। और फिर उसके बाद में सब पुरुष वर्ग आए हैं और स्त्रियों का आह्लादित प्रफुल्लित चेहरा देखकर उन्होंने क्या किया, अपने पास जो मक्खन के गोले थे उनको मारना शुरू कर दिया। उन्होंने भी दही लाया था, वो भी उन्होंने मारना शुरू कर दिया। कितना ऑड लगता है ना, दही, दूध, मक्खन। अभी देखिए समय बहुत कम है, लेकिन हम कोशिश प्रयत्न करेंगे। कहाँ से शुरू करें? ओके, तो सब जगह पर नंदगांव में बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाई थी जो चावल के पल्प से बनाई गई थी। सुगंधित जल छिड़काया गया था, सभी छतों पर पताकाएं, झंडे, हरे पत्ते लगाए गए थे। तीन प्रकार के प्रवेश द्वार बनाए गए थे, एक हरी पत्तियों से बनाए गए थे, कपड़े से बनाए गए थे, फूलों से बनाए गए थे। और सभी गायों को बैलों को और बछड़ों को और बच्चियों को सुसज्जित किया गया था, सुशोभित किया गया था, किस चीज से? हल्दी और तेल के मिश्रण से और सिंदूर से और पीले रंग के और मैंगनीज, ये धातु बहुत पवित्र है, उससे मिक्सचर किया हुआ, उससे पेंट किया था उनको, उनको उनकी पूंछों को मोर पंख लगाया गया श्रृंगार के रूप में, उनके गले में घंटा और रत्नों की मालाएं पहनी गई, उनके शरीर पर सिल्क यानी रेशमी वस्त्र पहनाया गया, उनके गले में सोने की घंटा बांधी गई और उनके सिंग पर सोने के कैप्स लगाए गए, टोपियाँ लगाई गई और सोने के नेकलेस घंटाहार बनाए गए। सारे जो ग्वाल बाल थे उन्होंने बहुत ही मूल्यवान वस्त्र पहने थे, रेशमी वस्त्र पहने थे, बहुत सुंदर रंग बिरंगी फेटे पहने थे गले में और कान में, बहुत सुंदर अलंकार पहने हुए थे और वो सब लेकर वहाँ पर आए और बहुत आनंद से विभोर होकर उन्होंने अब एक दूसरे पर ये सब वर्षाव करना शुरू किया। सभी स्त्रियों का श्रृंगार का भी वर्णन किया है, उन्होंने बहुत अमूल्य गहने पहने थे, अपने शरीर के ऊपर बहुत सुगंधित द्रव्य लगाए थे, उन्होंने कुमकुम लगाया था अपने चेहरे पर, अगुरु लगाया था और उनके शरीर पर आनंद की लहरें उठ रही थी, गले में घंटाहार पहना था, होंठों पर बताया गया है होंठों पर रंगी बिरंगी द्रव्य लगाया था जिसको हम लिपस्टिक कहते हैं, हाथों में कंगन पहने थे, बड़ी सुंदर मालाएं पहनी थी जो रस्ते में गिर रही थी। इस प्रकार से उनके सुपड़े में क्या क्या था? हल्दी पाउडर, तेल, दही, दूध, रोली, राई, नमक, ये सब कुछ था, जल भी था। उन्होंने सभी लोगों पर ये जल छिड़का, कृष्ण के ऊपर छिड़का, उनको आशीर्वाद दिया, सभी संगीतज्ञों ने वाद्य बजाए, गाने बजाए, सभी ग्वाल बाल उनको देखकर एक दूसरे पर मक्खन, दही, दूध सब फेंकने लगे। नंद महाराज का घर जो है मानो लक्ष्मी देवी के लीलाओं का स्थान बन गया। क्या कहा है भागवत में? शयत इंदिरा शश्वदत्र ही। तो इस प्रकार से जो नंद बाबा का घर है और नंद गोकुल में, नंद का जो गांव है, गोकुल पूरा गांव है, ब्रज है, वो पूरा लक्ष्मी देवी की क्रीड़ास्थली बन गई। हाँ, मैंने कल कहा था कि जब भी कृष्ण का जन्म हुआ तो उन्होंने पहले लक्ष्मी देवी को अदृश्य रूप में भेज दिया गोकुल में, जाओ मैं आने वाला हूँ, मेरे उत्सव की तैयारी करो। तो लक्ष्मी जी का कार्य था कहीं भी कुछ कम नहीं पड़ना चाहिए। तो उसके बाद में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इस समय रोहिणी जो है वो अंदर ही बैठी हुई है, यशोदा देवी सज सज कर बालक को लेकर सबके सामने है, रोहिणी एक ही है वो जो अंदर संकोच में बैठी है। कारण क्या? वहाँ पर समाज ऐसा रिवाज था उस समय कि अगर पति परदेश में हो तो श्रृंगार करके पत्नी जो है वो पब्लिक में नहीं आती। इनका पति परदेश में नहीं था, इनका पति वो भयंकर अवस्था में कंस के कारागृह में था, दुख भोग रहा था, तो उस समय वो सज धज कर उत्सव मनाने के लिए बाहर नहीं आ सकते। लोग क्या कहेंगे? देखो जिसका पति कारागृह में दुख भोग रहा है वो यहाँ पर सज धज के अलंकार पहन के उत्सव मना रही है। ये देखकर नंद महाराज स्वयं रोहिणी के कक्ष में गए और हाथ जोड़कर उन्होंने उनको वंदन किया है और कहा है कि मैं जानता हूँ आपकी स्थिति क्या है, मैं सब कुछ जानता हूँ, क्योंकि नंद बाबा और वसुदेव अच्छे मित्र थे और किस कारण रोहिणी वहाँ पर आई थी ये भी जानते थे वो, क्योंकि रोहिणी गर्भवती थी इसलिए वो वहाँ पर आई थी सुरक्षा के लिए। तो उन्होंने कहा कि मैं सब कुछ जानता हूँ लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि जब आप गर्भवती होकर यहाँ पर आई है उसके बाद में हमारी पत्नी गर्भवती हुई है, ये आपका शुभ शगुन है, आपके चरणों के गोकुल के स्पर्श के कारण ही हमारे घर में संतान प्राप्ति हुई है, बहुत शुभ संकेत है, इसलिए मैं आपको आदेश देता हूँ, मैं आपको विनती करता हूँ, निवेदन देता हूँ कि आप ये वस्त्र लीजिए। ऐसे करके वस्त्र लेकर ही गए थे वो, वस्त्र अलंकार सब लेकर गए थे बहुत कीमती, और मेरी आपको विनती है कि आप इसको पहनिए और मेरे लाला के जन्मोत्सव में भाग लीजिए। फिर वो इनके आग्रह से सज धज कर बाहर आई है। फिर उनको और आनंद देने के लिए और उनके संकोच को दूर करने के लिए नंद बाबा ने कहा कि ये मेरा भंडार है, जैसे आपका बालक के समय आपने बलराम के जन्म के समय सबको धन दान दिया, दान धर्म किया, मेरे बालक के लिए भी आप अपनी स्वेच्छा से दान दीजिए। तो यशोदा भी दान दे रही थी, रोहिणी भी दान दे रही है, इस तरह से इसको कहते हैं सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता, अपने मित्र के पत्नी के मन का विचार करते हुए उसको उन्होंने बहुत आनंद देने का प्रयास किया और रोहिणी देवी को अपने समारोह में सम्मिलित कर लिया। ये सब बातें जो हैं वो जीव गोस्वामी अपने गोपाल चंपू में समझाते हैं, बहुत सुंदर भाव दिया उन्होंने। इस प्रकार से रोहिणी ने फिर बहुत इंस्पायर हो गई, वो प्रेरणा मिल गई उनको और उन्होंने साक्षात जैसे लक्ष्मी देवी अपनी लीला कर रही है वैसे उन्होंने वो उत्सव मनाया। उसके बाद में सभी ग्वाल बाल, अपने जीव गोस्वामी बता रहे हैं कि सभी ग्वाल बालों को इतना उत्साह है कि सभी हजारों लाखों की संख्या में नंद भवन के आंगन में, गोकुल में जो नंद भवन है वहाँ पर सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं और सब कुछ जो लाया हुआ है वो एक रुपये फेंक रहे हैं। तो बड़े बड़े माखन के गोले जो फेंके उन्होंने, वो नंद भवन के आंगन की जो मोरियाँ हैं उसको ब्लॉक कर दिया उसने। दही भी फेंका जा रहा है, दूध भी फेंका जा रहा है, मक्खन के गोले भी फेंके जा रहे हैं। तो गोले जो थोड़ा टाइट थे वो जाके बैठ गए और वो सब नानी ट्रैप जो है वो ब्लॉक हो गया और जितना बाद में फेंका गया वो सब जमा 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 होते गया। कहते हैं कि सारे लोग जितने खड़े थे उनके कमर तक ये मिक्सचर जमा हो गया। तो आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, अगर यहाँ बैठे हैं आप सब खड़े हो गए और आपके कमर तक पूरा समुद्र बना हुआ है दूध दही और मक्खन और घी का और माखन के गोलों का। कुछ डूब रहे हैं, कुछ तैर रहे हैं, कुछ लॉक कर रहे हैं। तो उसमें सब लोग ने कहा, देखो उसमें एक ब्रजवासी वर्णन करते हैं ब्रज भागवत से कि सभी ब्रजवासियों पुरुषों ने मिलकर नंद बाबा का श्रृंगार किया, अपने हाथ से फेटा पहनाया, अपने हाथ से दुपट्टा पहनाया, धोती कुर्ता पहनाया, अलंकार पहनाए, फूलों की मालाएं पहनाई, कुंडल पहनाए, सब प्रकार के श्रृंगार से लद दिया उनको, बहुत उत्सव प्रिय बना दिया उनको। फिर उपरंत बाबा कहते हैं, अरे नंद, इतने देर से अभी संतान प्राप्ति हुई है, आपको नृत्य करना चाहिए। वो तो बैठे बैठे मटक रहे थे, सब लोग नृत्य कर रहे हैं, मटक रहे, देख के झूल झूल रहे हैं। बोले ऐसे बैठे बैठे नहीं, आपको आके झूलना है। बोले तो मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, तो मुझसे तो छोटे हो, तो मैं भी नाचना चाहता हूँ, आप भी नाचो। बोले मुझे नाचना नहीं आता, मैं तो अभी शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा हम आपको नचाएंगे। तो कुछ बड़े ग्वाल बाल सामने आए, उन्होंने अपना फेटा उतारा। तो फेटा कैसा होता है ना, ये जो होता है ना बहुत लंबा होता है, उसको गोल गोल घुमा घुमा के फिर वो सर को बांध देते हैं, उसको पूरा लूज कर दिया। एक खेच जो है वहां पर ना रावल से भी लोग आए थे। देखो आप पूरा ब्रज की बात कर रहे हैं, उत्सव गोकुल में हो रहा है, लेकिन रावल से राधा रानी के पिताजी, अभी उनको पुत्र संतान नहीं हुई है, लेकिन उनके गांव से सभी लोग आए हुए हैं, सब वनों से लोग आए हुए हैं। तो कहते हैं रावल बरसाना के लोग जो थे वो एक तरफ गए, नंद बाबा बीच में खड़े हैं, नंद गांव के इस तरफ गए और एक जो फेटा का जो एक खींच था वो इस तरफ घुमा के पेट का अंदर इधर खींच लिया और एक इधर खींच लिया। जैसे हम लोग जो मंथन करते ना रवि दही का, वैसे वो रवि बना दिया नंद महाराज को, उनके पेट के पास दो तीन कच फेर दिए और फिर नंद गांव के लोगों ने यहाँ खींचना शुरू किया और वहाँ खींचना किया। फिर क्या हुआ, नंद बाबा जो है मथनी बन गए और ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगे और मानो वो समुद्र में मंदार पर्वत का रूप धारण करके मंथन होने लगा। तो आचार्य हमारे ये भाव देते हैं कि क्षीर सागर में ऐसे ही मंथन हुआ था, उसमें पहले विष निकला था, इस समुद्र मंथन से क्षीर सिंधु जो नंद भवन के आंगन में बना उसमें से विष नहीं निकला, उसका मंथन करने से पहले ही अमृत का निर्माण हुआ था, आनंद के रूप में और चांद के रूप में, कृष्ण के रूप में। उस मंथन से एक चांद निकला था, इसमें से कृष्णचंद्र पहले ही जन्म ले चुके थे, उसमें से एक सुरभि गाय निकली थी, नंद बाबा ने लाखों लाखों गाय लुटा दी। कहते जन्म होते ही 2 लाख गाय दे दी। वसुदेव ने भी जेल में रहकर मन में 2 लाख सालंकृत उच्च उच्च अलंकार के साथ वस्त्र के साथ 2 लाख गाय मन में ब्राह्मणों को दान कर दी। ये भी बहुत सिग्निफिकेंट है बहुत। तो ऐसे सब लोगों ने नंद बाबा का बहुत नचाया, बहुत लोग गा रहे हैं, नाच रहे हैं, नंद बाबा को खींच रहे हैं, नंद बाबा भी गोल गोल डोल रहे हैं, उनके पेट की तरफ वो रस्सी की तरह फेटा बंधा हुआ है। ऐसा सुंदर क्षीर समुद्र मंथन हुआ, इसका वर्णन जो है वो आनंद वृंदावन चंपू में आता है। नंद बाबा के सुंदर उस समुद्र मंथन में देव असुर दोनों बाजू में थे, इसमें दिव्य रसिक लोग दोनों तरफ थे। मंदराचल बने नंद महीपति नंदराज, विष प्रकट नहीं हुआ, अमृत प्रकट हुआ। इस प्रकार से नंद बाबा ने उसमें इतना धन लुटाया है, इतना धन लुटाया है कि शंकर भगवान ब्रह्मा जी, इंद्र, कुबेर आदि सारी देवता वहां पर ब्राह्मण बनकर अदृश्य अवस्था में आए थे, जो अदृश्य नहीं लेकिन भेष बदल कर आए थे। जैसे राम जी के समय पर आए थे, चैतन्य महाप्रभु समय पर आए हैं, इस तरह सारे देवता जो है ब्राह्मण बनकर, ब्राह्मण ब्राह्मणी बनकर आए हैं उसे। तो जब नंद बाबा लुटा रहे हैं, इतना गौधन लुटाया, इतना रत्न लुटाया, इतना धन लुटाया कि शंकर भगवान जो है वो डर गए। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान नंदी बैल को लेकर आए थे, और अगर गाय बैल धन के दान के आवेश में अगर नंद बाबा बहुत भाव विभोर हो गए तो इसको भी समझ कर गौ शावक बनकर, यानी दान देने लायक को कहते हैं शावक, वो गौ शावक समझकर उसको भी दान देंगे तो हम जाएंगे कैसे वापस। तो वो कहते हैं नंद बाबा, सॉरी शंकर भगवान नंदी बैल की पूछ पकड़ के खड़े हो गए, क्योंकि इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि इतने बड़े बैल को उठाना मुमकिन नहीं था। तो पूछ पकड़ के, ऐसा होता ना, वो पट्टा पकड़ के खड़े हो गए, तो बैल को बचा लिया। पार्वती देवी भी आई थी, किसको लेकर आई थी? बालक गणेश को लेकर आई थी। कहते नंद बाबा ने इतना गज धन इतना लुटाया उस समय कि जब हाथी को बांटने लगे तो पार्वती देवी को डर लगा कि अरे कहीं मेरे बालक को भी दान कर देंगे तो कैसा होगा, तो तुरंत बालक को उठाकर गोद में रखा है, वो सब देख रहे हैं। इस प्रकार से कुबेर भी लज्जित हो गए। देखो कुबेर ने लक्ष्मी की तपस्या करके आशीर्वाद लिया है और वो को देवताओं के ट्रेजरी कोषाध्यक्ष बनाया, उनको सबसे अमीर विश्व में, ब्रह्मांड में कोई है तो कुबेर है धन के विषय में, क्योंकि सारे देवताओं का धन, उसका भी धन सब उसके कस्टडी में है। लेकिन जब वो नंद भवन में आया, वो गोकुल में आए और ये उत्सव में जो लुटाया जा रहा है, रत्नों को लुटाया जा रहा है, गोधन गजधन अश्वधन लुटाया जा रहा है, वो देखकर वो कहते हैं बावड़ो है गो, यानी उसकी मति बावड़ी है गई, उसको संकोच हुआ, उसको लगा मुझे तो भगवान ने सारे देवताओं के धन का मालिक बना दिया लेकिन मेरा धन इनके सामने एक अंश का भी नहीं है जितना धन नंद बाबा के पास है, वो देखकर लज्जित हो गया। तो इस प्रकार से ब्रज के जो रसिक जन है, संत जन, वो कहते हैं कि ये जो नंदोत्सव है, ये दृश्य हमारी नजरों में हमेशा बना रहे, सदैव यही प्रार्थना करते हैं कि नंदोत्सव का जो दृश्य है, तो नंद बाबा लुटा रहे हैं, इसमें क्या घटना हो रही है? एक सुंदर घटना ऐसी हो रही है कि नंद बाबा लुटा रहे हैं उच्च दातृत्व के साथ, हिज चैरिटेबल नेचर वॉज एट द पीक, इतना आनंद उनको हो रहा था कि उनके दातृत्व को सीमा नहीं थी, देयर वॉज नो लिमिट हाउ मच ही वॉज डोनेटिंग। तो उनका दातृत्व, उनका चैरिटेबल नेचर इतना प्रभावी था कि जो साधुगण ब्राह्मणगण दान ले रहे थे वो भी दातृत्व को भी प्राप्त हो गया उनको, और जो भी उनको प्राप्त हुआ उन्होंने लोगों को दान कर दिया। केवल धन नहीं लिया, नंद बाबा का दातृत्व इतना प्रभावी था वो भी ग्रहण किया उन्होंने, और जो जो प्राप्त हुआ भर भर के तो सबको दान दे दिया। आज भी जब नंद बाबा का उत्सव होता है ना, नंदोत्सव, तो सब लोग एक थैला लेके जाते हैं। अगर पूछेंगे आप क्यों लेके जाते हैं, बोलते इतना सब लुटा जाता है वो लाने के लिए थैला चाहिए ना, तो थैला लेके जाते हैं। उस तरह से साधुओं के जो थैले थे वो भर भर के, और इतने सारे धन को लुटाया गया कि ब्रज के भूमि में सब जगह रत्न और हीरे और माणिक और वस्त्र और गाय सब जगह पर, सबके साथ आपको दिया, आपके पास, आपके पास, सबके पास, सबके पास, सब जगह पर गायें और रत्न और फूल वर्षा सब हो रही थी। इसमें एक 125 साल की गोपी आई, हाँ ये ब्रज में इसका वर्णन करते हैं। वो नेचुरली उसकी उम्र 125 साल की थी, तो उसके मुंह में दांत नहीं थे, और हम जब हंसते हैं समझो मुंह खोलते हैं तो हमारा पूरा मुंह नहीं खुलता है क्योंकि दांत कुछ ढक देते ना अंदर का दृश्य। तो ये जो है वो अवाक हो गई। अवाक होने का मतलब क्या, इतना उत्सव मनाया जा रहा है कि वो अवाक हो गई और मुंह खोला उसने, तो जब मुंह खोला तो दांत तो नहीं थे तो पूरा मुंह खुल गया। तो किसी ब्रजवासी बालक ने मक्खन का गोला लिया और उसकी ओर फेंका, सीधे उसके मुंह में गया, तो चट से मुंह में गया और झट से निगल लिया। और उसने कहा कि आज के दिन, वो कह रही थी अपने मन में कि ऐसा उत्सव मैंने मेरे जीवन में कभी देखा नहीं, इसलिए वो आश्चर्यचकित विस्मयचकित होकर देख रही थी आ करके हुए। तो उसने बाद में कहा जब निगला उस मक्खन के गोले को कि आज के दिन में कोई भूखा नहीं रह सकता है, ऐसा वर्णन आता है। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार से नंद बाबा के उत्सव में धूमधाम से उत्सव मनाया गया। कहते हैं कि बंदी मागत सूद विरुदावली इन लोगों को सबको, हर गाने वाले व्यक्ति को नंद बाबा ने 1000 गाय दी, वस्त्र दिए, आभूषण दिए, रत्न दिए, घोड़े और हाथी दिए। जैसे निधि सिद्धि वृद्धि भक्ति और मुक्ति ब्रज के गलियों में ऐसे घर घर में फैली हुई थी। कौन कौन आए थे संक्षेप में वर्णन दिया है। हंस पर बैठकर ब्रह्मा जी आए थे, नंदी पर बैठकर शंकर जी आए थे, सूर्य रथ पर बैठकर आए थे, इंद्र हाथी पर बैठकर आए थे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अपने केवल नंद बाबा के आंगन में वो बालक गणपति और नंदी बाबा बैल थे, बाकी सब लोग ने अपना व्हीकल दूर पार्क किया था। खंजरीट पर बैठकर वायुदेव आए थे और भैंसा पर बैठकर यम आए थे। पुष्पक पर बैठकर अपने विमान पर बैठकर कुबेर आए थे। मृग पर बैठकर चंद्र आए थे। बकरे पर बैठकर अग्निदेव आए थे। मगर पर बैठकर वरुण देव आए थे। मयूर पर बैठकर कार्तिकेय आए थे। हंस पर बैठकर दोबारा हंस सरस्वती देवी आई थी। गरुड़ पर लक्ष्मी देवी आई थी। सिंह पर बैठकर दुर्गा देवी आई थी और गौ के रूप में पृथ्वी आई थी। खड़ग चक्र यष्टिधारी षष्ठी देवी आई थी। मृग पर बैठकर दोबारा मृग आता है यहाँ पर, चंद्र और बृहस्पति मृग पर बैठकर आए हैं। और गवई पर बैठकर शुक्राचार्य जी आए हैं और कौवे पर बैठकर शनि और ऊंट पर बैठकर राहु आए हैं। ये सारे का वर्णन आता है। नंद महाराज ने 7 पर्वत बनाए अनाज के, 7 पर्वत, और उसको ऊपर उसका शिखर जो है रत्नों से सजा दिया और फिर उसका पूजन करके भगवान को अर्पण करके सारे ब्राह्मणों को उन्होंने बांट दिया। इस प्रकार से बहुत बड़ा वर्णन है, सुंदर वर्णन है। और इसके पश्चात क्या हुआ कि उत्सव इतना धूमधाम से चला और ब्रज के लोग जब उत्सव मनाते हैं तो मग्न होकर मनाते हैं, वो समय भूख प्यास निद्रा कर्तव्य टाइम टेबल सब भूल जाते हैं। इतना मग्न हो गए क्योंकि जैसे दशरथ राजा को पुत्र नहीं हुआ था, दशरथ राजा के समय पर दशरथ राजा को पुत्र होने तक इतने हजारों साल तक कोई उत्सव नहीं मनाया गया। तो राजा को पिता के समय मानते थे, राजा को पुत्र का सुख नहीं तो अपने घर पुत्र होने पर भी किसी ने उत्सव नहीं मनाया। बड़ा धूमधाम से उत्सव बना, बड़ा धूमधाम से उत्सव बना तो कब बना, जब राम जी का जन्म हुआ, राम जन्मोत्सव मनाया गया। उसी प्रकार से सब लोगों ने धूमधाम से नंद बाबा के पुत्रोत्सव जन्मोत्सव मनाया तो सब होश हवास भूल गए। उनको पता ही नहीं चला कब सूरज आया आ रहा है, कब जा रहा है, कब आ रहा है, कब जा रहा है। एक जगह ऐसा वर्णन आता है 180 दिन 6 महीने तक नंदोत्सव चलता रहा। दिन रात गा रहे, नाच रहे, खा रहे, पी रहे, लुटा रहे हैं और किसी को सूर्यास्त सूर्योदय का भान भी नहीं रहा, किसी को निद्रा का भान नहीं रहा, किसी को भूख का भान नहीं रहा। खा तो रहे लेकिन भूख से व्याप्त नहीं हुए। 180वें दिन जब सूर्य ढल रहा था तो सब लोग होश में आए और उन्होंने ब्रह्मा को खूब दिल भर के गाली दी। क्यों? ब्रह्मा जी सठिया गया है, ब्रह्मा जी बुढ़ा हो गया है, उसको इतनी भी अकल नहीं है कि आज ठाकुर जी का जन्मदिन है, आज नंद में नंदोत्सव हो रहा है नंद भवन में, तो आज तो कम से कम सूरज को देर से ढलना चाहिए था। 179 सूरज ढल चुके हैं, उनको पता ही नहीं है। और 180वां सूरज का अस्त जो है ब्रह्मा जी को गाली देते देते वो समाप्त हुआ है। तो उसके बाद में जब 1 साल का जन्म होने का समय बर्थडे आया ना भगवान का, फर्स्ट बर्थडे, तो ब्रज में नियम है कि षष्ठी पूजन किए बिना आप प्रथम वर्षोत्सव नहीं मना सकते। तो यशोदा देवी को ध्यान में आया, अरे षष्ठी देवी पूजन तो किया नहीं क्योंकि 6 दिन में जो करना चाहिए था, तो 180 दिन तक नाचते रहे हम लोग। तो जब ही भगवान का पहले वर्ष की अष्टमी का समय आया तो जल्दी जल्दी में छठीग्रह जाकर भगवान का षष्ठी देवी का पूजन किया गया जो जरूरी था, और 2 दिन के बाद में फर्स्ट बर्थडे मनाया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो नंद महाराज के उत्सव की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच, हरि बोल। हरे कृष्णा, थैंक यू।